जब भी कभी अल्लाह ताला की तरफ किसी को बुलाया जाता है या अल्लाह के दुश्मनों से लड़ा जाता है तो उसमें माल की ज़रूरत होती है। तो अगली आयत में फरमाया, वन्फिकू फी सबीलिल्लाहि वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, और अल्लाह की राह में खर्च करो और अपने हाथों अपने आप को हलाकत में ना डालो। वाहसिनू, और नेकी किया करो, एहसान का तरीका इख्तियार किया करो, क्योंकि इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह ताला मुहसिनीन को पसंद करता है, जो एहसान करते हैं, जो नेकियां करते हैं, जो अच्छे काम करते हैं। यहाँ देखिए बहुत सिंपल आयत है बाकी आयात की निस्बत, कि जब भी इस्लाम के लिए कुछ करेंगे तो पैसे की ज़रूरत होगी ना। फिर आप इसको जिहाद की मुख्तलिफ शिकों पे आ जाइए, किताल तो बिल्कुल आखिर है, चलें ऊपर से शुरू कर लेते हैं क्योंकि बात तो वही हो रही है। अगर मुसलमानों के पास हथियार नहीं होंगे तो लड़ाई होगी, अगर मुसलमानों के पास कुछ भी रॉकेट नहीं है, लेटेस्ट असलहा नहीं है, फौजियों के खाने का इंतज़ाम नहीं है तो जंग होगी, भूखे लोग क्या काम करेंगे, तो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। नीचे आते जाइए, हमारा असल जिहाद तो फिर वही बात है कि इल्म से शुरू होता है। पैसे ना हो, मुनासिब इंतज़ाम ना हो तो क्या आप इल्म सीख सकते हैं? मुनासिब जगह ना हो, दीन का काम हो सकता है? ये हो ही नहीं सकता कि बंदा ये कहे कि मैं अल्लाह के मामले में संजीदा हूँ और फिर वो अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने से हाथ खींचे। छोटी सी बात समझ लीजिए कि हम जिस चीज़ के बारे में संजीदा होते हैं ना, उस चीज़ पे हम खर्च करते हैं। मसलन आपके पास लैपटॉप है, हो सकता है आपने 5,000 करोन का ख़रीदा हो, बहुत बड़ी रकम लगेगी लेकिन आपने ली, क्यों? क्योंकि आप सीरियस थे, आपको पता है कि मुझे लैपटॉप की ज़रूरत है। सेलफोन और कोई और चीज़ें आप महसूस करते जाएं, हमें जिस चीज़ के बारे में यकीन होता है ना कि वी रियली नीड इट, संजीदा होते हैं उसके बारे में हम खर्च करते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम जब अल्लाह के मामले में संजीदा होते हैं ना, तो हम गिन गिन के नहीं खर्च करते और रो रो के नहीं खर्च करते। अल्लाह ताला कहते हैं कि मुसलमान जब मेरे रास्ते में उस खुशी से खर्च करें जिस रास्ते में ये अपने ऊपर खर्च करते हैं, फिर मुसलमानों के हालात बदलेंगे। या फिर वही वयकूनु दीनु लिल्लाही की एक अमली सूरत का आपको एक थोड़ा सा स्केच बता दूं कि मुसलमान कब जंगों में जीतेंगे, जब मुसलमान इतनी खुशी से अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे जितनी खुशी से अपने बच्चों की शादी पर खर्च करते हैं, जितनी खुशी से अपने जेवरात ख़रीदते हैं, जितनी खुशी से अपने घर ख़रीदते हैं। एक आम बंदा, एक ऑर्डनरी फैमिली, आप देखिए कि शौहर बीवी और 2 या 3 बच्चे होते हैं ना, एक जनरली 4 बच्चे हैं घर में, मिसाल ले लेते हैं हम, 4 बच्चे होते वैसे कम ही हैं लोगों के, अब 4 डरते हैं लोग, हैं 6 लोग औसत कर लें घर की, आप उनके लिए एक घर ख़रीदते हैं। यहाँ अमूमन घर कितने का आता है, कोई आपकी इन्फॉर्मेशन हैं? जी 3 मिलियन का घर आता है जी, यानी आप ये कह लें कि 2 से 4 मिलियन के बीच में। मुझे रास्ते में ही बात हो रही थी तो किसी ने कहा कि 2 बेड का घर किसी ने लिया 3 मिलियन का ना, तो मैं सोच में पड़ गई, अल्लाह ताला मुबारक करे और जिनको अल्लाह ताला दे रहा है उसको और रखे। तो अब आप सोचिए कि हम इसको इस तरह सोचते हैं कि जिस घर से फ़ायदा उठाना है 6 लोगों ने, चले मेहमान आते जाते रहेंगे घर में, कोई आते जाते हैं, 8-10 लोगों के लिए अगर घर हम खुशी से लगा लेते हैं ना 4 मिलियन। लेकिन अब अगर आप इसी चीज़ को लगाएं आगे कि किसी ऐसी कॉज में कि जहाँ दीन का काम होता है, जहाँ दीन को कोई मस्जिद कह लें, कोई मदरसा कह लें, कोई सीखने की बातें, तो फिर वहाँ कितना लगना चाहिए। अमूमन हम अपने घरों में कारपेट जो डलवाते हैं वो कैसा कितना डलवा लेते हैं, जो चीज़ 50, 100, 1,000 लोगों के इस्तेमाल में आनी है और डेली आनी है उस पर कितनी खुशी से खर्च होना चाहिए। लेकिन अभी आपने सुना कि कोई इसलिए फ़ंड रेजिंग कर रहा है कि उसने घर बनाना है, कोई इसलिए चंदा जमा कर रहा है कि उसने बच्ची की शादी करनी है, नहीं, खुशी से करते हैं। लेकिन जो ही दीन की बात आती है, जहाँ कॉमन कॉज है, जो लोगों का फ़ायदा है, एक घर में 4 लोगों ने रहना है, आप 4 मिलियन लगा रहे हैं, जिस घर में 100 लोगों को फ़ायदा होना है उस पर तो आपको दिल की खुशी से 50 मिलियन लगा देना चाहिए, लेकिन कोई बात करके कर भी नहीं सकता है इतनी बड़ी बात। हालांकि मुझे नहीं लगती, यानी जैसे आप देखिए कि हमारे पास, आपको होता है कि अल्लाह की रहमत से जगह बड़ी खूबसूरत है लेकिन तंग है, और अभी ज़रूरत महसूस होती है। तो कभी मार्केट में कोई चीज़ आती है और कोई दिखाता है तो मुझे वो रकम तो कुछ भी नहीं लगती वल्लाही, क्योंकि मेरी नज़र अल्लाह के ख़जानों पे होती है। लेकिन कभी कहता है इतनी बड़ी रकम है, ये कैसे आएगी, शुरू कैसे होगा, कहाँ से आएगा। तो मैं सोचती हूँ कि जो बंदा सिर्फ़ एक फैमिली अपनी ज़ाती खर्च पर 3-4 मिलियन लगा सकती है, तो इतनी बड़ी कॉज़ के लिए 8-10 मिलियन लगाना मेरा नहीं ख्याल कोई बड़ी चीज़ है। लेकिन होता क्या है कि जब हम अल्लाह के रास्ते में लगाते हैं तो मुश्किल क्यों लगती है। इसका किसी ने एक बड़ा अच्छा कमेंट दिया कि असल मसला ये नहीं कि लोग लगा नहीं सकते, मसला ये होता है वो पूछते हैं कि एंड पे उस जगह का मालिक कौन होगा। अपने घर पे हम लगाते हैं तो अपनी मलकियत है। तो मैंने उसके जवाब में कहा कि जो लगाए वो अपनी मलकियत में रख ले, अपने नाम की तख्ती लगा दे, किसी को क्या, असल तो चीज़ काम की बात है ना। लेकिन अल्लाह के हाथ रास्ते में ना लगाने को यहाँ क्या कहा गया, वन्फिकू फी सबीलिल्लाही वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका। इसका तर्जमा आप जाके अपनी अम्मियों से पूछ सकते हैं। और उर्दू का एक बहुत मारूफ मुहावरा है, अपने आप को हलाकत में डालना। सुनी हुई बात, हलाकत में डालना, खुद अपने लिए कुआँ खोदना, ये वो मुहावरा है अरबी का कि ख़ुद को हलाक करना है अल्लाह के दीन पे माल ना लगाना। जब मुसलमान खुले दिल से खर्च करते थे ना इल्म पे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हों का दौर ले ले, आइडियल दौर था, इतना लोग दिल के खुल के खर्च करते थे कि पैसे की ज़रूरत ही नहीं होती इस्लाम को, तो इस्लाम फैला, फतूहात भी हुई, मुसलमान इल्म भी सीखते थे। आप कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हों ने कितना प्यारा सोशल सेटअप बनाया था कि जिसमें फ्री तालीम थी। आज हम खुश होते हैं ना कि वेस्ट में जाते हैं तो इनकी स्कूलिंग और कॉलेजिंग तो शायद महंगी हो जाती होगी बाद में, लेकिन शुरू की बेसिक एजुकेशन फ्री है। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का नज़रिया। वो सारे एक्सपेंसेस स्कूलों के और टीचर्स के और वहाँ काम करने वालों के वो गवर्नमेंट से देते थे। जब वो टूटा मुसलमान टूट गए। आज मुसलमानों के स्कूलों में मस्जिदों में टूटी हुई कुर्सियाँ ही नहीं हैं, टूटे हुए लोग भी हैं। बेकार लोगों को भर्ती किया जाता है ऐसी जगहों में, क्या करें कि हम बड़ी तनख्वाहें नहीं दे सकते, कोई दुनिया का पढ़ा लिखा हम कैसे लाएं अपनी मस्जिद या अपने इदारे में, हम उसकी पे नहीं अफोर्ड कर सकते। जब ये हालात होंगे तो कौमें अपने आप को हलाकत में डाल लेती हैं। दुश्मनों को खूब पता है कि ये एक एक शादी पे 4-4, 5-5 लाख रुपया लगा देंगे एक दिन में, लेकिन ये दीन के ऊपर नहीं लगाएंगे। नतीजा क्या कि दुश्मन की जरूरत बढ़ती है। ये एक बहुत, जिसको आप कह सकते हैं कि पिन पॉइंट, जहाँ अल्लाह ताला ने बता दिया कि ऐसे लोग जो हैं फिर वो दुश्मनों के हालों में हाथ में तर निवाला बन जाते हैं। फिर ये दावे ना करें इंसान के मुझे बहुत कुछ करना है, मेरे दिल में बड़ी ख्वाहिश है, फिर काफिर गालिब आता है और मुसलमान मगलूब होता है। कहा कोई बात नहीं, वाहसिनु, आगे नहीं था तो अब एहसास कर लो, अब अपने आप को मुहसिन के दर्जे पे ले आओ, अब अपने दीन के कामों में हुसन पैदा करो। आज क्यों हमारे दीनी इदारे बेचारे कमज़ोर, टूटे फूटे, पानी नहीं, कुर्सियाँ टूटी हुई, क्योंकि लोग अपनी बचकुच वहाँ फेंक के जाते हैं। यहाँ तो मेरा लिए इजाज़त नहीं है ना हमारे मुल्कों में, आप पाकिस्तान में जाके देखें, टूटी कुर्सी, टांग भी टूट जाए पहले कोशिश करते हैं जोड़ने की, जब बिल्कुल नहीं जुड़ती कहते हैं जाओ बेटा मस्जिद में रखो, कोई बैठेगा तो खुद ही गिरेगा तो ठीक करा लेगा। यानी यकीन करें रोने की बात है। हर बंदा अपना स्टैंडर्ड देखे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखे, किन जगहों पे हम बैठते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या हमारा स्टाइल है, और साथ ही इसको दीन पे ले आए। अपने नाम पे दावत पकाएंगे, 6 खाने 8 खाने बेहतरीन कैटरिंग, और अगर कभी दर्स करवाना पड़ जाए या दीन की दीन के प्रोग्राम रखना पड़े, सबसे बड़ा फिक्र क्या होता है, हाय खाना भी खिलाएंगे, हाय फिर 1 खाना के 2 खाने, फिर इतना गंद भी पड़ेगा। नहीं नहीं हम अपना घर नहीं गंदा कर सकते। ये सोच जब मुसलमानों में आती है ना तो वो कौमें हलाक हो जाती हैं। हालांकि अल्लाह ताला दावत देता है कि इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह को तो एहसान करने वाले अच्छे लगते हैं। एहसान का लफ्ज़ ये हुसन से निकला, ब्यूटीफाई योर डीड्स, दो ही मानों में आता है, नेकी करो और एहसान करो। और एहसान कहते हैं हक से ज़्यादा देना, जिस किसी काम को खूबी के साथ करना। अब देखिए काम करने के 2 दर्जे होते हैं, मतलब मैं इस वक्त पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ रहे हैं, हम इसी की मिसाल ले लें और बीसी चीज़ों में हम इन चीज़ों की मिसाल ले सकते हैं कि हर काम को करने के 2 तरीके हैं। एक क्या है, चल चलाओ, जान छुड़ाए, मैं अपने आप को देखूं कि मैंने तो ये लेसन ख़त्म करना है, चलो भाई जल्दी जल्दी करो, हो गया, समझ आई, नहीं आई, चलो भाई लेसन ख़त्म, कल अगला लेसन करेंगे। और एक है कि नहीं, मैंने नहीं उठना यहाँ से जब तक इन बैठे हुओं में से 98% लोगों, बल्कि 100% को ये सेटिस्फेक्शन ना हो जाए कि हमें बात समझ आ गई है। फिर भी ना आए उसके भी स्टेप्स होते हैं, लेकिन अपनी कोशिश के मुताबिक इंसान उस काम को बेहतरीन दर्जे से करे। इसी तरह आपके लिए मुहसिन होना, कैसे आप बन सकती हैं मुहसिना? आप कुरान सीख रहे हैं, आपने कमिटमेंट की है, बहुत बड़ी कमिटमेंट है। कोई किसी निकाह नामे पे साइन करके बंधा बन जाता है और सारी ज़िंदगी के लिए पाबंद होता है, उसको तोड़ना पड़े तो उसको तलाक कहते हैं, जो बहुत ही एक तकलीफ़दह अमर है। आप सोचते हैं कि मैंने तो दुनिया के किसी माहदे पे नहीं, मैंने तो अल्लाह के नाम पे साइन किया है। अब आप कहते हैं नहीं, दी मोस्ट एक्सलेंट, वक्त से पहले आना है, तैयार हो के आना है, घर से खा पी के आना है ताकि भूख ना लगे, रात को जल्दी सोना है ताकि नींद ना आए, सबक पिछले दिन का दोहरा के आना है ताकि ग्रुपिंग में शर्मिंदगी ना हो, यहाँ अपनी हर चीज़ को अपने से दूर करके आना है, सेल फ़ोन तो मेरे साथ अंदर आ ही नहीं सकता, मैं यहाँ बैठ के सुनूंगी लिखूंगी, मुझे अपने आप को हर तरह से तैयार करना है और इंशाल्लाह फिर इसके बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से रिप्रोड्यूस भी करना है। और कोई है वो कहेंगे अच्छा जी अब कर लिए, आज नहीं जाते, हफ्ते में 2 दिन नहीं जा सकते, जल्दी तो बिल्कुल नहीं जा सकते, और अगर जल्दी क्लास हो गई फिर तो हम नहीं आ सकते। तो याद रखिए कि वो मुहसिना नहीं है। आप में से कोई ग्रुप भी है मुहसिना? कितने लोग हैं मुहसिना ग्रुप के? आप सबके लिए तो लम्हे फिक्रिया ज़्यादा ही है। नाम रखना कितना आसान है मुहसिना, लेकिन मुहसिना बनने के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, और मुझे तो आप सारी मुहसिनात लगते हैं, पता नहीं क्यों मेरा आपके बारे में गुमान बड़ा अच्छा है। तो इंशाल्लाह आप जिस मोहब्बत से इस कुरान को सीख रहे हैं ना, ये बात लिख के रख लें किसी कोने में, आज ना पढ़ें इसको, आप वक्त के साथ साथ जब इस कुरान से जुड़ते जाएंगे, 1 साल के बाद आप ज़रूर आके मुझसे पूछिएगा कि अब आप अपने दिल की हालत क्या पाते हैं। हम एक फ़र्द को अगर मुतमईन कर लेते हैं, अगर मैंने अपने आप को मुहसिना बना लिया, मैंने अपना आप अल्लाह के लिए पेश कर दिया, मैंने अपनी जान माल अपना वक्त अपनी स्किल्स अल्लाह के रास्ते में लगा दी, फिर देखिए कितना होगा। कितनी बातें हम अपनी क्लासेस में करते हैं कि हमें यहाँ स्किल्स की ज़रूरत है लोगों की, हमें कंप्यूटर वर्क करना है। बहुत सारी बच्चियाँ मुझे ऐसी दिख रही हैं इंशाल्लाह कि ये आके कंप्यूटर स्किल्स के साथ हमारे साथ चलेंगी, ये वेब डिज़ाइन करेंगी। हमारा ड्रीम है कि हम अपनी इधर नॉर्वे की अपनी वेबसाइट बनाएं। सब कुछ हो सकता है, सिर्फ चंद हाथ और चंद दिमाग चाहिए। तो इनफाक अगर पैसे का है तो वो स्किल्स का भी तो है ना, वो वक्त जो जिसके पास है वो अल्लाह के रास्ते में लगा दे। इल्म अल्लाह दे रहे हैं, पैसा है ला अल्लाह ला रहे हैं। कल अल्लाह ये नहीं मुझसे पूछेगा तुमने पैसा क्यों नहीं दिया, अल्लाह मुझसे कहेगा तुम्हारे पास इल्म था तुमने दिया नहीं। जिसके पास पैसा अल्लाह उसको पैसे का पूछेगा, जिसके पास जगह अल्लाह उसे जगह का पूछेगा, जिसके पास वक्त है उससे पूछेगा। एक बेहतरीन टीम वर्क क्या होता है कि हम सब अपनी पूंजियाँ लेके आ जाएँ। एक सहाबी थे, जब गज़वे तबूक के मौके पर उन्होंने सुना कि इस्लाम को पैसे की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं था पास में, दिल में दुख आया कि अल्लाह मेरे पास कुछ भी नहीं कि मैं दूँ, गए और जाके एक यहूदी का कुआं चलाया, एक डोल निकालने की एक खजूर मिली, सारा दिन चलाते रहे या गालिबन रात को चलाते रहे, और जब वक्त ख़त्म हुआ एक मुट्ठी भर खजूरें ली, शर्माते हुए छुपाते हुए अल्लाह के नबी के पास ले आए। कहा अल्लाह के नबी जब मैंने सुना कि इस्लाम को मेरी ज़रूरत है पैसे की, मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैंने कहा कि मेरे पास मेहनत की ताकत है और मैं ये मेहनत करके चंद खजूरें लाया हूँ, अगर इसका कुछ हो सके तो कर ले। मुनाफिकों ने मजाक उड़ाया, ठट्ठे उड़ाए, कहते देखो रूमियों को फतह करने जा रहे हैं, यानी आज ऐसे जैसे सुपर पावर, रोमन से लड़ने जा रहे हैं और मुट्ठी भर खजूरें ले रहे हैं। लेकिन अल्लाह के नबी ने उसकी खजूरें ली और उस पूरे ढेर के ऊपर रख दी, और आपने फरमाया कि आज मुट्ठी भर खजूरें पूरे ढेर पर गालिब आ गईं, और कुरान में आयत नाजिल हो गई। अल्लाह ताला कहते हैं कुछ लोग ऐसे हैं कि नहीं वो पाते इल्ला जोहदा हम, अपनी मेहनत का पाते हैं। तो अल्लाह तो ये देखेगा ना। अमेरिका में मैं एक ऐसी बड़ी प्यारी खातून को जानती हूँ, यानी कन्वर्ट हैं, पहले वो गालिबन ख़ुद को इस्माइली कहती थी, उसके बाद वो ऐसे ही इंट्रेक्शन था अपनी कम्युनिटी में, कैटरिंग करती हैं समोसे रोटियाँ कच्ची बना के ना, तो वो बेचती हैं, अब बेचती हैं, तब पता नहीं क्या करती थी। बहरहाल इनको इस्लाम में कशिश महसूस हुई, मुसलमान हुई, या आज से कोई 10-15 साल पहले की बात होगी, इससे भी ज़्यादा। बहरहाल किस्सा मुख्तसर यह है कि वो खातून हमारे पास ह्यूस्टन में इस वक्त, वाकई मैं कहती हूँ कि वो एक एसेट है हमारा, इतनी बज़ाहर अल्लाह ही जानता है दिलों के हाल, लेके हम ज़ाहिर पे क्यास करते हैं, मुत्तकिया अल्लाह से डरने ली, रात को शोहर बीवी दोनों बैठ के, बूढ़े इस वक्त 70s 80s के बीच में, सारी रात समोसे बनाते हैं, बेलती है और वो कच्चे आलू वो बना देती हैं, मियाँ हेल्प करते हैं, फिर वो उनको डजन्स के पैक बना के रखती हैं। तकरीबन हमारे इर्द गिर्द वाले सब लोग दौलत खाला उनका नाम है, मैं उनको बड़ा प्यार से कहती हूँ कि आप तो दौलत हैं, आप तो मनी हैं, आपको तो बहुत संभालना है। फिर वो समोसे रोटियाँ बनाती हैं और जो पैसे आते हैं वो डोनेट करती हैं। यकीन करें कि वो औरत इतनी अच्छी नीयत की है, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे। प्यार मुझसे भी वो बहुत करती हैं, और लेकिन मैंने देखा है कि वाकई जोहदा हम वो हैं, वो ना करें, उनको उनके बच्चे भी कहते हैं कि अम्मी आप ये ना करें, कहती मैं इस्लाम के लिए करती हूँ, पैसे इतने देती हैं। आती थी हमारे पास उधर स्कूल में, हर वक्त उनका झगड़ा ही होता था कि मैंने ये देना है, मैंने वो देना है। हम कहते थे अम्मा आप बताएं, हम आपको दें, हम दें। हम उन्हीं से समोसे खरीद के स्कूल में बेचा करते थे, लेकिन वो कहती थी कि मुझे करना है, और मेरे हाथ पाँव का ये सदका है, मैंने अल्लाह के लिए करना है। और यकीन करे जहाँ डोनेशंस की बात आती है, वो मेरा ख्याल है दूसरों से भड़के देने वालों में होती हैं। तो पैसा ज़्यादा होने से कुछ नहीं होता, असल ये है कि आपका जज्बा ज़्यादा है कि नहीं, आप क्या करना चाहते हैं, आपके अंदर ख्वाहिश कितनी है कुछ करने की। अगर आपके दिल में है ना, तो वो बढ़ेगी, और फिर आप देखेंगे कि अल्लाह ताला कैसे आपको पसंद करेगा। दिल चाहता है कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे, मुहसिनात बनने को बहुत आसान है। हम दुनिया पे लाखों भी खर्च कर देते हैं ना, अपना घंटों का वक्त भी देते हैं, फिर ज़रा सा वक्त ना देंगे लोग नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह के रास्ते में जब हम कुछ करते हैं, फिर अल्लाह की ऐसी प्यारी मोहब्बत हमें मिल जाती है कि हमें दुनिया की हर चीज़ से बेनियाज कर देती है। हाँ, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई, इसकी तमन्ना करें। आपकी उम्र में तो वैसे ही मोहब्बत करने को दिल चाहता है, करें क्या, मोहब्बत तो करनी है, मजबूरी है, करके देखनी है ना मोहब्बत, अल्लाह से करके देखें। इतनी ज़्यादा दूसरों के दिलों में वो आपकी मोहब्बत डाल देगा, बेहतरीन इंसान के दिल में आपकी मोहब्बत डालेगा जब आपकी ज़िंदगी उसके साथ निभेगी। और हम तो सिर्फ अपने आप को ज़ाया करते हैं, किसी के पास $100 होते हैं ना, वो उसके साथ उससे बेकार चीज़ें खरीद के आ जाता है, और कोई उसी $100 से बड़ी कीमती चीज़ खरीदता है। हमारा ये वक्त, ये माल, ये सेहत, इससे चाहें तो दुनिया की चार चीज़ें खरीदें, आज ले आएँ कल बेकार, एक स्वेटर पहन के देखा कुछ नहीं, फेंक दो, एक दो दफ़ा पहनी जूती फेंक दी, कभी पहनते ही नहीं दोबारा। लेकिन उसी पैसे से अगर हम अल्लाह को की मोहब्बत खरीदते हैं, इंशाल्लाह वो हमारे साथ जाएगी। अब यहाँ से सबक की अब आखिरी आयत है, जहाँ से बाकायदा हज का मज़मून शुरू हो रहा है। असल में तो हज का टॉपिक अगले लेसन में आएगा, लेकिन यहाँ हज ही से रेलेवेंट कुछ बिदात जो अरबों में थी उसका तذکرہ है। तवील थोड़ी आयत है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि आपके लिए जितना भी आसान करके पेश कर सकूं तो आपके रखूं। बस आप लोग नज़रें नहीं हटाएं अपनी लेसन से, जितना लेसन के ऊपर आपकी नज़रें रहेंगी उतना इंशाल्लाह ताला बात को समझेंगे। और लंबी आयत का पढ़ने का तरीका क्या होता है कि इसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें। व अतिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह, और अल्लाह की खुशनूदी के लिए हज और उम्र की नीयत करो तो इसको पूरा करो। इतने कोई साथ डिफ़ाइन करती जाती हूँ तो इजी होगा मुझे लगता है कि हज और उम्रे को अल्लाह के लिए पूरा करो। हज का लफ्ज़ जो है हमारे लिए मारूफ है, अरकान इस्लाम में से एक बुनियादी रुकन है, पांच चीज़ें जिन पर इस्लाम की बुनियाद एक हदीस की रोशनी में हमें पता चलता है, उसमें से एक चीज़ हज है। हज का लफ्ज़ी जो लफ्ज़ है ना, हा जीम जीम से है, हज, ये जीम दो दफ़ा हम बोलते हैं, इसका लफ्ज़ी माना होता है इरादा करना। बड़ी प्यारी बात है, इसके बीच में हम सिर्फ इरादा ही करते हैं, बाकी सारा काम अल्लाह करवाता है। कसद करना, इरादा करना, तैयारी करना। हज जो है ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हर नबी ने किया, लेकिन इसकी जो आज के दौर की मौजूदा सूरत है ना, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तरफ निस्बत की जाती है। पहले पारे के आखिर में हम पढ़ चुके हैं ना कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम और इस्माईल से जब अपना घर बनाया तो फिर हज़रत उन्होंने दुआ की कि वह अरीना मनासिकना, ए अल्लाह हमें अब यहाँ हज करने का तरीका भी बता दे। तो बहरहाल हुआ क्या कि अरब लोग हज़रत इब्राहीम के तवस्सुत से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की चूँकि नस्ल में से थे, तब से हज हो रहा था। अब आप समझ लें ये बात, कितना पुराना है हज, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं, हज़रत इस्माईल इब्राहीम के दौर से था। और आप थोड़ी सी उस हिस्ट्री को जहन में लाएं कि हज़रत इस्माईल बचपन में वहाँ छोड़ दिए गए थे, वहाँ फिर चश्मा जमजम का चश्मा निकला, फिर हज़रत इब्राहीम हज़रत बीबी हाजरा जो थी उनके कदमों पे सफ़ा और मरवा की सही की बात हम पीछे पड़ चुके। तो हज का जो मौजूदा तरीक़ा है ना, ये अरबों में मारूफ था, लेकिन हुआ क्या, वक्त के साथ साथ अरबों ने हज के अंदर बहुत सारी बिदात शुरू कर दी। इजाफे शुरू कर दिए। असल तरीका रह गया एक तरफ और उसमें घुस गई बहुत सारी चीज़ें। उसी में इस वक्त जो अतिमुल हज वल उमरत लिल्लाह के अंदर बात है, वो क्या है कि अरबों में एक बिदत शुरू हो गई थी, और वो क्या थी कि एक ही सफ़र में हज और उमरा इनको करना वो गुना समझने लग गए। ऐसे ही नहीं जी, नहीं सिर्फ हज करेंगे, उमरा नहीं करेंगे। हालांकि आप आज के दौर में अगर हज कर चुके हैं तो आपको पता है कि आप जब हम हज पे जाते हैं तो इस हज को हम हज तमत्तो कहते हैं। आगे अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको मैं उसकी किस्में लिखाऊंगी, नहीं हुआ तो आप किताबुल हज और उमरा में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, फ़िक्हुस सुन्ना में। तो हम जब हज के लिए अब जाते हैं तो एक से ज़्यादा उमरा भी कर लेते हैं कि भाई जब आए हुए हैं तो एक से ज़्यादा काम कर लिए जाए। तो अरबों में ये रिवाज पड़ गया था कि नहीं, बस जी सिर्फ हज करो। अच्छा जी नहीं, बस जी सिर्फ अब उम्रा करो। ऐसे ही जैसे हमारे होता है ना, कुछ बढ़ के नेकी करने का शौक़ बंदे को लग जाता है ना, अल्लाह ताला ने उस बात को निगेट किया कि नहीं, कोई गुनाह की बात नहीं। व अतिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह, शौक़ से हज और उम्रा दोनों अल्लाह के लिए पूरा करो। बास ने इससे ये बात भी ली कि अगर आपने नियत कर ली है तो उसको पूरा करें। तो इसमें समझ लीजिए कि फ़र्ज़ हज तो हज है ही है, फ़र्ज़ ही है। अगर बंदा हज की नियत कर लेता है, किसी वजह से रुक जाता है, अगले हिस्से में इसकी बात आती है, मैं थोड़ा वो आगे करके फिर चलती हूँ। फ़ाइन उख़सिर तुम, फिर अगर तुम रोक लिए जाओ, घिर जाओ, यानी तुम यहाँ से निकले हज के लिए, जद्दा एयरपोर्ट पे रोक लिए गए, पेपर का प्रॉब्लम हो सकता है, वीज़े का कोई प्रॉब्लम है, खुदा न खास्ता सेहत नहीं, बीमार हो गए, पॉसिबल होता है ना, कई लोग ऐसे हैं जो हज के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई, शोहर का इंतकाल हो गया, औरत बेवकी में चली गई, कोई भी वजह। फ़ाइन उख़सिर तुम, फिर अगर तुम घेर लिए जाओ, अगर तुम किसी वजह से हज करने से रुक गए हो तो क्या करो। फमस तैसर मिनल हजी, तो फरमाया जो कुर्बानी मुयस्सर हो अल्लाह की जनाब में पेश कर दो, ये है कफ़ारा। आज के दौर में जब हम हज करते हैं ना, इसको कहते हैं हज तमत्तो। तमत्तो मता से आगे आएगा लफ्ज़ ये भी इसी सबक में, आगे सबक में। तो इसमें हम कुर्बानी का जानवर साथ नहीं लेके जाते, ऐसे ही है ना, वहाँ से लेते हैं। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो आपने एक हज किया था, आप कुर्बानी का जानवर साथ लेकर गए थे, उसको हज किरान कहते हैं। कराना कहते हैं साथ मिलने को, जैसे ये आप दो दो बैठे हुए हैं ना, साथ साथ जुड़े हुए हैं, तो आप एक दूसरे के करन हैं। करीन का लफ्ज़ आप अरबी में पढ़ेंगे आगे। हम नशीन को कहते हैं क्लासमेट, रूममेट, साथ बैठने वाले। तो हज किरान क्या होता है कि उसमें एक ही एहराम के अंदर उमरा और हज होता है। आप यहाँ से गए, एहराम बांधते हैं, साथ कुर्बानी का जानवर लेते हैं, फिर आप सीधा जाके उमरा करते हैं, फिर अहराम नहीं खोलते, फिर आप इंतज़ार करते हैं 7-8 तारीख जो भी ज़िलहज के दिन शुरू होते हैं, जब मीना की तरफ रवानगी है, फिर वहाँ जाके पूरे रिचुअल्स करके फिर अहराम खोलते हैं और कुर्बानी को करते हैं। नबी सल्लम ने यह हज किया था, लेकिन ये बड़ा मुश्किल होता है, इतने दिन अहराम की पाबंदियाँ सहना मुश्किल है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने बाद में फरमाया कि अगर मुझे पहले पता होता तो मैं हज तमत्तो करता, अगर मैंने अहराम ना बांध लिया होता इस नीयत से तो मैं भी हज तमत्तो करता। तो आपने अपने सहाबा को इजाज़त दी थी कि वो चाहें तो हज तमत्तो कर लें। उसमें फ़र्क ये होता है कि उमरा करके अहराम खोल देते हैं आप, फिर जितने भी दिन रहें फिर उसके बाद दोबारा बांधते हैं। तो पहली सूरत है कि आप कुर्बानी के लिए गए, अगर तो हज किरान था तो कुर्बानी तो आपके साथ ही थी, तो बस उसको काट दें। फमस तैसर मिनल हज, बस जो कुछ मुयस्सर हो तुमको कुर्बानी में से उसको ज़िबा करो। अब कहाँ ज़िबा की जाए इसके बारे में इख्तलाफ है। बस कहते हैं कि जहाँ बंदा रुका वहीं काट दे, क्योंकि नबी सल्लम को और आपके साथियों को जब हुदैबिया के मुकाम पे रोका गया था उमरा करने से, तो आपने वहीं अपनी कुर्बानियाँ कर दी थी। बास कहते हैं कि नहीं, आप हरम में लेके जाएंगे और वहाँ काट, आप नहीं जा रहे, किसी के ज़रिए से भेजेंगे और काट दें। बहरहाल ये इतनी डिटेल आपके लिए इस वक्त काफ़ी है कि बस उसका फ़दिया क्या है, दम क्या है कि एक कुर्बानी दे दें। अब आप और मैं, हम साथ तो कुर्बानी नहीं लेके जाते, तो बस कभी खुदा न खास्ता हज की नीयत की हुई थी लेकिन वहाँ जा के रोक दिए गए, तो फिर आप एक जानवर की कुर्बानी कर दें। ये पहली सूरत। आगे देखिएगा, वला तहलीकू रुसकुम, और ना मुंडवाओ अपने सरों को। मुंडवाना क्या होता है, शेव करना, यानी हज के बाद मर्दों के लिए एक रिचुअल है, और वो क्या कि जब उमरा कर लिया जाता है, सफ़ा और मरवा की सही के बाद फिर बालों को मुंडवाया जाता है। जिसके बाद फिर इंसान एहराम की पाबंदियों से निकलता है। तो फरमाया अब हज तो नहीं कर सके, उम्रा तो नहीं कर सके, लेकिन अपने बालों को मुंडवाओगे कब? हत्ता यबलुगल हज महिल्लहु, जब तक कि कुर्बानी अपनी जगह पे ना पहुंच जाए। यानी पहले कुर्बानी करो, जब यकीन हो जाए कि कुर्बानी हो गई है, फ़दिया दे दिया, फिर मर्द जो है अपने बालों को मुंडवा देंगे। तहलीकू का लफ्ज़ है यहाँ, हा लाम काफ से बालों का कटवाना है। और हज में पसंदीदा क्या है, जब भी कोई मर्द हज उमरे पे जाए तो पूरे बालों को शेव करवा दे। बाज़ लोग कुतरवाते हैं, थोड़े थोड़े ट्रिम करा लेते हैं, ट्रिमिंग अलाउड है लेकिन शेव पसंदीदा। 3 दफ़ा आपने दुआ की थी उन लोगों के लिए जो हज में ट्रिमिंग, जो हज में पूरे बाल कटवाते हैं, जिसमें बिल्कुल बाल ख़त्म हो जाते हैं। और फिर जब सहाबी ने कहा तो फिर आखिर में आपने शेव करने वालों के लिए कहा। क्यों मुश्किल लगता है लोगों को? हेयर स्टाइल ख़राब होता है ना, गेटअप ख़राब होता है। हम चाहते हैं हम जो मर्ज़ी नेकी करें, लेकिन हमारे पोस्चर पे फ़र्क ना है। हमें बस एहराम की बजाय 3 पीस सूट में हज की इजाज़त मिल जाए तो कर लेंगे। अल्लाह ताला हज के ज़रिए भी बंदे को क्या कुछ सिखाता है, ये आगे अब हम पढ़ते ही जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ दूसरी बात के बाद फिर एक ऑप्शन दे दी, फमन कान मिनकुम मरीदन, बस जो कोई तुम में से बीमार हो वो क्या करे, नंबर एक बीमार हो, और दूसरी बात क्या है कि वो औ बिही अज़म मिर रासी ही, उसके सर में कोई तकलीफ़ है। सर में तकलीफ़ कैसे होती है? अभी बात हुई ना बालों को कटवाने की, तो बाज़ लोगों को कोई बीमारी होती है। यहाँ इशारा है इस सूरत में कि अगर किसी वजह से सर के पूरे बाल ना कोई कटवा सके या कुर्बानी ना कर सके, कोई भी वजह हो सकती है, तो इसका कफ़ारा क्या है? फमन कान अमिनकुम मरीदन, नंबर एक जो कोई बीमार हो, दूसरी बात है औ बिही अज़म में रासी या उसके सर में तकलीफ़ है तो फिर बाल कटवाए। आपको पता है कि अहराम की हालत में बाल नहीं तोड़ने देते, सुनी हुई है ना ये बात आपने, लेकिन यहाँ मजबूरी क्या कि कोई अहराम में था, सर में जुएं पड़ गई। एक सहाबी थे, काब बिन उजरा उनका नाम है, अहराम की हालत में थे। और इमेजिन करें ना कि वो गर्मियों के सफ़र, मक्का से मदीना कई दिन का सफ़र, पसीने भी आएंगे कुछ, तो सफ़र के दौरान उनके सर में जुएं पड़ गई। अब अल्लाह के नबी सल्लम तक आए के पास आए और इतनी कसरत से थी कि वो बाहर दिख रही थी, तो फिर अब मजबूरी होगी कि उनके बाल काटे जाएं। तो अब क्या किया जाएगा? अज़म में रासी ही बाल कटवा दें, आपने उनके बाल शेव कराए, लेकिन इसका कफ़ारा क्या है? फ़फिद या तुम मिन से आमिन, रोज़े रखे जाए, औ सदक़तिन या सदका, औ नुसक या कुर्बानी दी जाए। 3 ऑप्शंस दे दी। हदीस से पता चलता है कि कोई अहराम की हालत में मजबूरी के तहत अगर बाल कटवाता है तो 3 दिन के रोज़े रखेगा, ये ना करे तो 6 मिस्कीनों को खाना खिलाएगा, और कम से कम फिर 1 बकरी को ज़िबा करेगा। इनमें से जो ऑप्शन भी या के साथ है, पहली चूज़ करे वो ना हो तो दूसरी, दूसरी ना हो तो तीसरी। और ये रोज़े कब रखे जाएंगे? फ़ाइज़ा अमिन तुम, जब तुम अमन में आ जाओ। यानी ये सब कब होगा? जब सबब दूर हो गया, कहीं रोके गए थे हाजियों के लिए, यानी हालात के मुताबिक है। जहाँ भी अमन नसीब हो, मुराद है कि अपने घर में आ जाओ, दुश्मन का खौफ ख़त्म हो गया, तब ये काम हो जाएगा। अब यहाँ एक बात पूरी हो गई है, खुलासा इतनी बात का क्या है, एक सफ़र में हज और उम्रा कर सकते हो, कोई गुनाह नहीं। दूसरी बात हमने इसमें देखी कि जो हज और उम्रे के लिए जाएगा, अगर कहीं रोक लिया जाए तो कुर्बानी देगा, कुर्बानी जब दे देगा तो उसके बाद बालों को कटवा लेगा। अगली चीज़ हमने अभी तक मसाइल में जो पढ़ी वो क्या है कि बालों को अगर काटना पड़े अहराम की हालत में तो फिर बाल कटवा ले और 3 रोज़े रख ले, वो नहीं है तो 6 मिस्कीनों को खाना खिला ले, ये भी नहीं तो 1 जानवर को, 1 बकरी को ज़िबा कर दे। यहाँ तक बात पूरी हुई। अब आगे दूसरा हिस्सा शुरू होता है, फमन तमत्ता बिल उमरत इलल हज्जी, बस जो कोई शख्स तुम में से हज के ज़माने के आने तक उम्रे का फ़ायदा उठाए तो क्या करे? फमस तैसर मिनल हज्जी, तो कुदरत के मुताबिक कुर्बानी दें। फमल्लम यजिद फसियामु सलासति अय्यामिन फिल हज्जी व सब अतिन इज़ा रजातुम, और अगर कुर्बानी मुयस्सर ना हो तो 3 रोज़े हज के ज़माने में और 7 घर पहुँच कर रखे, तिल का अशरतुन कामीलतुन, ये पूरे 10 हो गए। अच्छा, अब यहाँ एक मसला समझ लें जो मैंने पढ़ दिया लेकिन आपको दोहरा देती हूँ कि हज जब हम करते हैं ना हज तमत्तो, तो उसमें लाजिम है कि हर हाजी अपनी कुर्बानी भी दे। इसके बरक जब हम अपने घरों में होते हैं तो एक कुर्बानी पूरी फैमिली की तरफ से काफ़ी होती है ना, और वो फ़र्ज भी नहीं है, सुन्नत है, लेकिन हज के साथ कुर्बानी लाजिम है। ये जो आयत हमने आखिरी पढ़ी है ना हिस्सा, इसका इसमें क्या है कि अगर बिलफर्ज़ कोई हज के लिए गया, कुर्बानी नहीं देता, पैसे नहीं, जेब चोरी, जेब कट गई, कुछ भी मामला हो गया, भूल हो गई, तो अब इसका कफारा क्या है? 10 रोज़े, 3 रोज़े वहीं रखेगा उन्हीं अयाम तशरीक में, और 7 रोज़े घर वापस आके रखेगा, तो 10 रोज़े पूरे होंगे। क्या मसला समझ आया कि हज के दौरान कुर्बानी ना करने का कफारा क्या है? कि 10 रोज़े रखे जाएंगे पेनल्टी के तौर पर। कैसे? 3 रोज़े वहीं और 7 रोज़े घर आके। लेकिन ये हुक्म किसके लिए? अब इसकी ऑप्शन देखिएगा, ज़ालिका, ये क्या, ये हुक्म किसके लिए है? लिमा लम यकुन अहलुहु हादिरिल मस्जिदिल हराम। ये रियायत उन लोगों के लिए है जिनके घर बार मस्जिद हराम के करीब ना हो। देखिए अल्लाह ताला का इंसाफ, हम यहाँ से जाते हैं ना तो हमारे लिए हुक्म है, अगली आयतों में आपको उसकी डिटेल्स दूंगी इंशाल्लाह, कि हम पूरा खर्च पानी साथ लेकर जाएं, जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो ना जाए, ठीक है? उसके लिए तो लाजिम है हज के अंदर कुर्बानी करना। लेकिन अब एक ऑप्शन है कि कोई रहता ही मक्का में है, उसका तो कोई ख़र्चा ही नहीं है, बस उसने उठ के जाके मिना तक अपनी जिस्मानी मुशक्क़त करनी है, लेकिन पैसे नहीं है उसके पास, तो क्या फिर उसको ये 7 रोज़े और 3 रोज़े रखने की ज़रूरत नहीं है? ज़ालिका लिमन लम यकुन अहलुहु खादिरिल मस्जिदिल हराम, के जिनके घर बार मस्जिद हराम के करीब नहीं, जो दूर से हैं उनको कुर्बानी लाजिम है। लेकिन आप मक्का में रहते हैं, मिसाल है आप में से किसी के भाई बहन कोई रहते ही मक्का में है, आप यहाँ से हज के लिए निकले, आप तो कुर्बानी देंगे, नहीं देंगे हज के साथ कुर्बानी तो 10 रोज़े रखेंगे, लेकिन आपके भाई जो मक्का में रहते हैं, हालात ख़राब हैं, वो आपके साथ चलते हैं, मैं भी हज करता हूँ, लेकिन वो कहते हैं हाय मैं कुर्बानी कैसे दूंगा, मेरे पास पैसे नहीं, तो उनके लिए रियायत है, क्योंकि अल्लाह को पता कि ये तो रहता ही इधर था। आप यहाँ से देखिए कि कितनी बारीकी है ना, अल्लाह ताला ऐसे ही बिल्कुल लोगों को अहकाम नहीं दे देते। आखिर में फिर वही बात जो पूरे सबक में कई बार दोहराई गई, वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ। पूछे अपने आप से, इतनी दफ़ा सुनने के बाद भी डरती हूँ? हज के दौरान अल्लाह कह रहे हैं अल्लाह से डर जाओ, कोई फिल्म नहीं देख रहे थे कि बार बार अल्लाह ताला के लोगों अल्लाह से डरो? क्या पता चला कि अल्लाह के डर के बग़ैर हज जैसी इबादत भी कर लें तो फ़ायदा नहीं होता, जब वो सिर्फ़ हमारे लिए एक बस रिचुअल बन चुका हो। वालम अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, देख लो अल्लाह ज़बरदस्त अज़ाब देने वाला है। हम कहते हैं हज करके आए तो वापसी पे हमें सुर्ख रंग का अल्लाह लिखा हुआ दिखता है, इस बात की दलील है कि अल्लाह ने हमारा हज कबूल कर लिया। हम कहते हैं जो हज करके आता है 40 दिन तक उसकी दुआएं कबूल होती हैं, उसको फूलों के हार पहनाओ, उसे दुआएं कराओ, कहते हैं ना, उसको खाने खिलाओ, उसको जोड़े दो, कपड़े दो। अल्लाह हज से आने वाले को कह रहे हैं कि मैं बड़ा अजाब वाला हूँ। क्या पता चला कि हज ही बन गए हो, अब अपने आप को फायर प्रूफ ना समझो, बल्कि तुम्हें भी अल्लाह से डरने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे एक सबक का खुलासा हुआ, मफहूम यही है कि अल्लाह ताला हमें ज़ाहरी रिचुअल से उठाकर स्पिरिचुअलिटी सिखाता है, अल्लाह का डर ना हो तो फ़ायदा ही नहीं होता। और यहाँ देखिए वालमू में लफ्ज़ इल्म की शान भी है ना, कि अल्लाह ताला इल्म की अहमियत भी हमें बताते हैं। वो हज जो इल्म हासिल करने के बाद किया जाए उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होता है जो बग़ैर इल्म के हासिल किया जाए। कई स्टूडेंट्स हमें ऐसे मिलते हैं क्लासेस में जब आते हैं तो वो कहते हैं कि हमने जो हज किया था हम तो हंसते ही बोलते हुए आ गए। एक ने कहा कि हमारी शादी हुई उसके फौरन बाद हज था, तो हमने ऐसा जैसे एक ट्रैवल होता है ना अपनी शादी के बाद एक करें अलग, हमने उस तौर पर हज कर लिया था, तो हम तो पता नहीं खेलते कूदते ही आगे बाजारों में खाते पीते आए, हज भी कर लिया, तो अब पता चला हमने तो कुछ भी नहीं किया, तो अब पढ़ने के बाद दिल चाहता है कि फिर हज करें। तो इससे फिर इंशाल्लाह इंसान वाकई स्पिरिचुअलिटी के साथ हज करता है। ये जो इकाब है ना, इकाब कहते हैं वो सज़ा जो किसी अमल के पीछे आए, यानी अल्लाह ताला कोई जुल्म नहीं तुम पे करेगा, जैसे काम तुम करोगे वैसा ही अल्लाह ताला तुम्हारे साथ कल मामला करेगा क़यामत के दिन। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको अमल की तौफीक अता फ़रमाएँ। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।